أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر اپستھت ہوں، میرا پیار بھرا سلام سویکار کیجیے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نجاستیں یا اپوترتاؤں سے سمبندھت کچھ آرمبھک مسئلوں کو بیان کیا. ہم نے اپنے اس پروگرام میں کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا، اور تھوڑا سا یہ بتایا کہ پیشاب اور پخانے کی بحث ہماری پہنچی تھی. ہم نے یہ بتایا کہ انسان اور وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یہاں پر ایک بات کوٹ کی جانے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ خون جہندہ ہونا آوشیک ہے. خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ خون جہندہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب اس جانور کو کاٹا جائے یا ذبح کیا جائے تو اس کے اندر سے خون اچھل کے نکلے، یعنی خون بہنے لگے. اگر خون اچھل کے نکلتا ہے تو اس کو خون جہندہ کہا جائے گا. تو ہر وہ جانور جو حرام گوشت ہو، جس کا گوشت کھانا ورجت ہو، اور انسان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہوتا ہے. اسی میں آگے جو بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ حرام گوشت پرندے، وہ پچھی جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کی بیٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے، آدیش یہ ہے کہ وہ پچھی جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا بیٹ، ان کا فضلہ نجس ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوا ہے تو کوے کی بیٹ نجس ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی بیٹ ہوتی ہے، کوئی فضلہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام گوشت جانور کا یا حلال گوشت جانور کا ہے، یا جس جانور کا ہے اس کا خون جہندہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر سندے ہے، اگر شک ہے جانور کے حلال گوشت یا حرام گوشت ہونے کے بارے میں، یا خون کے جہندہ اور نہ جہندہ، یعنی اچھل کر نکلنے نہ اچھل کر نہ نکلنے کے بارے میں سندے ہے، تو اس بیٹ کو پوتر کہا جائے گا اور وہ بیٹ نجس نہیں ہوگی. اسی میں جو ہے اس کے بعد جو بات آتی ہے، جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے جب آپ کو بیان کر رہے تھے کون کون سی چیزیں نجس ہیں، تو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز جو پیشاب اور پخانہ ہے، تو پیشاب اور پخانے سمبندھت ہم نے آپ کے سامنے ان مسئلوں کو بیان کیا. اس کے بعد جو چیز آتی ہے اور وہ جو چیز نجس ہے، اس میں ایک ہے مردار. مردار بھی نجس ہوتا ہے، اپوتر ہوتا ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں پرشن اٹھے مردار کہتے کسے ہیں. مردار انسان کے مرت شریر کو مردار کہا جاتا ہے، یا وہ جانور جس کو شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے انوسار ذبح نہ کیا گیا ہو، یا وہ سوئم مر گیا ہو. اگر کوئی انسان شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے انوسار ذبح نہ کیا جائے یا سوئم مر جائے، تو اس کے مرت شریر کو مردار کہا جائے گا. تو انسان کا مرت شریر مردار ہوا، اور جانور کا جو شریعت کے قانون کے انوسار ذبح نہیں کیا گیا، یہ ہوا، اس کو کہتے ہیں مردار. یعنی اس شریڑی میں جو کچھ بھی آئے گا وہ مردار ہوگا، اور جب مردار ہو گیا تو وہ نجس کہا جائے گا. انسان میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے وہ نجس، اس کا مرت شریر، اس کی باڈی نجس ہوتی ہے، چاہے وہ ابھی ترنت مرا ہو یا مرے ہوئے دیر ہو چکی ہو، چاہے اس کا شریر ٹھنڈا ہوا ہو چاہے نہ ٹھنڈا ہوا ہو. یعنی اگر انسان مر گیا ہے تو اس کا شریر نجس ہے، اور اگر کوئی انسان چھو لیتا ہے تو نجس بہرحال ہو جائے گا. اس میں دو چیزیں جو ہم نے آپ کو جو ہے غسل مس میت کے بھاگ میں ہی بتائی تھی، دو شریر ایسے ہوتے ہیں جو نجس نہیں ہوتے ہیں. پہلا شریر یہ ہے کہ انسان جب مرا ہے تو وہ جنگ کے میدان میں، یدھ کے میدان میں، رڑ بھومی میں مرا ہو، اسلام کے دشمنوں سے لڑتے سمے وہ ویرگتی کو پراپت ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا ہو، تو شہید کا شریر نجس نہیں ہے. اور دوسری چیز، اگر کوئی انسان مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو اگر تینوں غسل دے دیے گئے تو اس کی باڈی نجس نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ پوتر ہوگی. اب اگر کوئی انسان کو چھوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. تو یہ ہوا مردار انسان کے بھاگ میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردار جو ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا مسئلے ہیں؟ उसमें मसले अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला बात यह है कि अगर इंसान वो शरीर, वो हैवान, वो जानवर जो मरा है, मुर्दार है, अगर वो मुर्दार का शरीर कुत्ते और सुअर का हो तो वो नजिस है, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं, कुछ नहीं, सब कहते हैं कि ये नजिस है। लेकिन अगर मरने वाला जानवर कुत्ते और सुअर के अलावा है, यानी कुत्ता और सुअर नहीं मरा, कोई और जानवर मरा है, तो उसमें एक बात सबसे पहली यह आएगी, तो उसके अंदर खून जहिंदा पाया जाता था, यानी उसका खून उछल कर निकलने वाला है, या खून जहिंदा नहीं पाया जाता है। तो अगर खून जहिंदा पाया जाता है तो उसके शरीर के वो भाग जिनमें आत्मा का प्रवाह होता है, जो जीवंत हैं, यानी जिनमें जिंदगी पाई जाती है, जैसे हड्डी, गोश, खाल, तो ये हैं, तो ये नजिस हैं। लेकिन शरीर के वो भाग, शरीर का वो हिस्सा जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जैसे कि बाल, रोएं और इस प्रकार की चीज़ें, नाखून, जिनके अंदर आत्मा नहीं पाई जाती, जीवन नहीं पाया जाता, इस प्रकार की चीज़ें उसकी पवित्र हैं, इस प्रकार के, भले ही वो मुर्दार हो गया लेकिन उसकी इस प्रकार की चीज़ें पवित्र होंगी। लेकिन अगर खून जहिंदा नहीं है, यानी हैवान, जानवर जो मरा है, जिसका शरीर मृत हुआ है, उसके अंदर खून जहिंदा नहीं पाया जाता है, खून उछल कर निकलने वाला नहीं है, जैसे कि वो मछली है या सांप है, तो उसका पूरा शरीर, पूरे शरीर के सारे अंग पवित्र हैं, उसके बारे में कोई भी अपवित्रता नहीं पाई जाती, कुछ भी नजिस नहीं होगा। इसके बाद जब हमको ये मालूम हो गया कि कौन से जानवर जो मुर्दार है उससे कौन सा अंग किस सूरत में नजिस होता है और किस सूरत में पाक होता है, तो इसके बाद कुछ मसले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानवरों के शरीरों के अंगों से बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में इसी से भाग निकलता है, इसी से मसले निकलते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो यहाँ पर हम कुछ मसले आपके सामने बयान करेंगे और उनका हुक्म आपको, उनका आदेश आपको बयान करेंगे। वो चीज़ें जो मुर्दार के शरीर से बनाई जाती हैं, अगर चीज़ें जानवर के शरीर के उन हिस्से से बनाई जा रही हैं जिनके अंदर रूह नहीं पाई जाती है, आत्मा नहीं पाई जाती है, अगर बनाई जा रही है तो वो पवित्र हैं। जैसे कि अगर कोई बकरी मर गई या भेड़ मर गई या इस तरह की चीज़ मर गई है, तो उसके अगर रोएं से, उसके ऊन से, उसके बालों से अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो पवित्र होगी, उसकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं है, चाहे वो चीज़ बनाने वाला मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं वो मुसलमानों की बाज़ार हो चाहे गैर मुसलमानों की बाज़ार हो, हो सकता है काफिरों की, हिंदुओं की, या किसी और धर्म के मानने वालों की बाज़ार से भी अगर हम ख़रीद रहे हैं तो वो चीज़ पवित्र है। लेकिन अगर जिस चीज़ से बनाई जा रही है वो चीज़, उसके अंदर आत्मा प्रवाहित होती हो, उसके अंदर जीवन पाया जाता हो, जैसे गोश्त, जैसे खाल, तो अगर इन चीज़ों से बनाई जा रही है तो ऐसे चीज़ों में नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। यानी अगर इंसान हलाल गोश्त जानवर के मुर्दार से, के खाल से, जैसे गाय की खाल से एक जैकेट बनाई जाती है, तो अगर इस प्रकार होता है तो उस जैकेट में नमाज पढ़ना इंसान का सही नहीं होगा, उसमें नमाज अगर पढ़ी जाए तो नमाज उसकी बातिल है। इसमें एक चीज़, एक और भी जो बात आती है इसी में, आगे मैं आपको बयान करता चलूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हलाल गोश्त जानवर है उसकी खाल से कुछ बनाया जाता है, जैसे कि चमड़े की चीज़ है, जिसमें यहाँ पर इस बात को बयान कर दूं क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा पेश आती है। अगर चमड़े की चीज़ें बनाई जा रही हैं हलाल गोश्त जानवर के उससे, तो क्या वो चीज़ें पवित्र हैं या अपवित्र हैं? तो अगर जिस चीज़ को बनाया गया है, जिसके बारे में एक हमारे सामने जैकेट आती है या बेल्ट आती है, जिसको हमने देख कर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि चमड़े की है या चमड़े की नहीं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको पता ना हो कि चमड़े की है या नहीं है, तो उसके अपवित्र, उसकी पवित्रता के बारे में कोई संदेह नहीं, यानी वो पवित्र होगी। जिस चीज़ के बारे में संदेह, हमको पता ही नहीं कि चमड़े की है या चमड़े की नहीं है, तो वो पवित्र होगी, वो किसी भी सूरत में अपवित्र नहीं कही जाएगी। यहाँ पर एक बहस और भी आती है जिसको हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपके सामने बयान कर दें, और उसके बाद जो और भाग आएंगे उसमें हम आपके सामने विस्तृत रूप से इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी हलाल गोश्त जानवर से के शरीर के उस अंग से कोई चीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर आत्मा पाई जाती है, जैसे कि गाय के शरीर की खाल से जूता, जैकेट, बेल्ट या इस प्रकार की कोई चीज़ बनाई गई है, और हमको पता है कि ये गाय की खाल से बनी है या भेड़ की खाल से बनी है या इस प्रकार के और जानवरों की खाल से बनी है, तो इसके बारे में क्या आदेश है? क्या वो चीज़ें पवित्र हैं, अपवित्र हैं? उसमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती? इसमें अलग अलग प्रकार के मसले हैं। सबसे पहला ये है कि वो चीज़ जो बनाई गई है किसी हलाल गोश्त जानवर से, वो इस्लामी देश में बनाई गई हो, जैसे कि सीरिया में, बहरीन में या ईरान में, इस प्रकार के अगर किसी देश में बनाई गई है, इस्लामी देश की बनी हुई चीज़ है, तो वो पवित्र होगी। तो दूसरी बात यह है कि बनी तो वो गैर इस्लामी देश में, मसलन किसी ऐसे देश में बनी जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बनी है, या किसी ऐसे देश में बनी है, बनी किसी और देश में है, बिक रही किसी इस्लामी देश में, कहीं बनी मसलन बनी चीन में है और बिक रही सऊदी अरब में, या किसी और देश में बनी किसी और जगह मिल रही है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो कहा यह गया है कि अगर वो इस प्रकार का है कि अगर किसी गैर इस्लामी देश में बनी है, इस्लामी देश में बिक रही है, तो उस वो चीज़ नजीस है, शरीयत के बनाए हुए कानून के आधार पर ज़िबा किया गया था। जैसे कि इंसान को पता हो कि हिंदुस्तान में जो ये जैकेट बनी है वो किसी ऐसे कारखाने में बनी है या किसी ऐसे इंसान ने बनाई है जिसके बारे में हमको यकीन है कि उसने जिस जानवर को ज़िबा किया था, ज़िबा शरीयत के कानून के अनुसार किया था। अगर हमको इस बात का यकीन हो जाता है, हमको इस बात का विश्वास हो जाता है कि वो शरीयत के कानून के अनुसार ज़िबा की हुई चीज़ है, तो वो चीज़ पाक होगी। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, पहली तो बात कि इस्लामी देश में बना हुआ, दूसरी बात यह है कि हम गैर गैर मुसलमान से ख़रीदी हुई चीज़ है चमड़े की गैर मुसलमान से ख़रीदी हुई चीज़ है, इसके बारे में ही अलग अलग भाग हैं। पहला तो ये कहा था कि हमने ख़रीदी बहरहाल गैर मुसलमान से, एक हिंदू से, एक ईसाई से, एक यहूदी से, किसी और से ख़रीदी है, लेकिन वो बनी हुई चीज़ इस्लामी देश की है, जैसे कि ईरान में, सऊदी अरब में, सीरिया में, इस प्रकार के किसी और देश में बनी है। अगर गैर मुसलमान इस्लामी देश की बनी हुई चीज़ बेच रहा है और हम अगर ख़रीदते हैं, तो वो चीज़ भले ही चमड़े की है लेकिन वो पवित्र कही जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हम गैर मुसलमान से ख़रीद रहे हैं, ये बनी हुई गैर इस्लामी देश में, यानी बेचने वाला भी गैर मुसलमान है, बनी हुई गैर इस्लामी चीज़ वो इस्लामी देश में है, जैसे चीन में बनी ही है या किसी और अमेरिका में, किसी और देश में, इस तरह के अगर देशों में बनी हुई जहाँ इस्लामी कानून लागू नहीं है, तो अगर वो चमड़े की जैकेट, वो चमड़े का जूता जो इस प्रकार का है, गैर मुसलमान से ख़रीदा हो, गैर इस्लामी देश में बना हो, तो वो नजिस है। मगर ये कि फिर वही बात कही जाएगी, मगर ये कि हमको विश्वास हो, हमको पता हो कि जिस देश में बनाई गई है वो देश या जिस जगह पर बनाई गई है वहाँ पर उसको, उस जानवर को शरीयत के कानून के अनुसार ज़िबा किया गया था। अगर इस बात का हमको विश्वास हो जाता है, तो भले ही वो गैर मुसलमान बेच रहा हो, भले ही गैर इस्लामी देश से बनी हो, लेकिन वो पवित्र होगी। इसके बाद इसी से नजासा से संबंधित कुछ और मसले हैं जिनको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।